विचरना पड़ता है इस बुद्धि की वजह से। मुझे एक घटना याद आती है, एक मित्र थे, व्यक्ति थे, उनके एक बहुत अच्छे मित्र थे। वो जब मिल जाते थे उनको ऑफिस में, बड़े प्यार से बात करते थे। उनको लगता था कि मैं तो बहुत गया जीता हूँ, ये मेरे मित्र कितने प्यारे हैं, इतनी बढ़िया बात करते हैं, सबसे खुश हो करके मिलते हैं। आते ही साथ जो है रौनक हो जाती है पूरे ऑफिस में इनके आने से, ये बड़े जीवंत व्यक्ति लगते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत गाढ़ी मित्रता हो जाने से मन में आया कि इनके घर वो आए, तो वो उनके घर गए अपने मित्र के। तो घर में जैसे ही पहुंचे, नॉक किया तो मित्र आए और उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला तो वैसे हॉट वार्मली, ये अपन कहते ना कि बहुत गर्म जोशी से जैसे स्वागत करना चाहिए, वैसा स्वागत नहीं किया। आओ, बस इतना ही कहा, लेकिन चेहरे पर उनके कोई वैसा भाव नहीं था जैसा कभी ऑफिस में हुआ करता। जिनको थोड़ा लगा कि शायद कोई बात है, या तो शरीर वरीर की तो कोई तकलीफ होगी, या फिर घर में कोई बात हो गई होगी इस वजह से गमकीन है, तो भीतर पहुंच गए और जाकर के उनको बिठा ला, तो बैठ गए। देखा कि उनका नौकर निकला, तो नौकर निकला सामने से तो ये और थोड़े से, अभी तो थोड़ा मुस्कुराहट थी लेकिन अब वो भी गायब हो गई। और जब बेटा वहां से निकला तब इसने और उसको इस तरह से हिरासत से देखा जैसे कोई जीव जंतु निकल गया हो। और जब जीवन साथी ने कहा कि सुनो कुछ बनाना है क्या चाय वाय, तो इनने ढंग से जवाब ही नहीं दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये वही व्यक्ति है, ऑफिस में कितने बढ़िया से मिलता है और यहाँ पर तो इसकी हैबिट ही बिल्कुल चेंज हो गई। तो धीरे से कहा कि बात क्या है, कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे खेल चुप रहो, ये घर है, चुप रहो, ये घर है, तुम पहली बार मिले मेरे से घर में, अभी तक ऑफिस में मिलते थे, वहां ज्यादा चिंता की बात नहीं, यहाँ तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता, बड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है। क्या ध्यान रख ले कर चलना पड़ता? पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता। अच्छा, कैसे सुरक्षा का ध्यान रखते हैं आप? बोले हम इसलिए ऐसा गमगीन उदास चेहरा बनाए रखते हैं, अगर हम अपने नौकर के सामने कभी मुस्कुरा पड़े तो नौकर धीरे से कहता है कि साहब बहुत दिन हो गए, थोड़ी तनख्वाहें बढ़ा दो। इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, वैसे नहीं। और अगर बेटे के सामने मुस्कुरा दें तो बेटा तो पॉकेट में हाथ डाल लेता, कहता बाबूजी आज आप खुश नजर आ रहे हैं, जरा 2 रुपए दे दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए, इसलिए जरा सावधान रहता। और जीवन साथी से अगर ढंग से बात कर लें तो वो तो साड़ियों के लिए तो अब भी तैयार है और बाजार घूमने के लिए, इसलिए थोड़ा ये सुरक्षा है, ये बुद्धि के द्वारा बनाई हुई सुरक्षा है जिसमें भावनाएं मर गई है। ऐसी सुरक्षा लेकर के जीते रहिएगा लास्ट के मानेंगे तो क्या होने वाला है? ऐसा तो कोई भी जी लेगा। इस तरह की बुद्धि की सुरक्षाएं हमने कर रखी हैं, हम ठीक से चेतना का आदान प्रदान भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी सोचिएगा इस बात के बाबत, एक व्यक्ति जीवन भर अपनी कार ड्राइव करता रहे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो अपनी कार के पैंच पुर्जों को ठीक ठीक जानता। और हम लोगों के साथ भी यही है, जीवन की कार हम खुद अपने हाथ से कई कई जिंदगियों ड्राइव करते आए हैं, लेकिन हमें उस जीवन का कौन सा स्क्रू किस तरह से कहां काम आएगा इसका जरा भी ख्याल नहीं है। कहां जरूरत है भावनाओं की और कहां जरूरत है बुद्धि की और विवेक की, हम भूल जाते हैं। बुद्धि और विवेक दोनों अलग चीज है। ऐसी बुद्धि जो भावनाओं से समन्वित है उसी का नाम विवेक है। और बिना विवेक के न धर्म शुरू होता है न संसार आसानी से चलता है। आज के समय में इस चीज का बहुत अभाव हो गया, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करने योग्य नहीं है। अगर इतना विवेक होता तो आज कहे को इतनी सारी बातें सुनने में और कहने में और शर्म से माथा झुकाना पड़ता, क्यों झुकाना पड़ता? अगर हमारा विवेक होता, हमारी बुद्धि को हमने भावनाएं दी होती कि क्या वितरागता के मायने हैं और क्या राग रंग के मायने हैं, कहाँ राग रंग जरूरी है, कहाँ वितरागता जरूरी है, अगर इस बात का विवेक हमारे भीतर पैदा हो जाता तो कोई कहीं कोई आज मेरे ख्याल से तो यहीं पर स्वर्ग होता और हम अपने जीवन को इतने आसानी से जीते। और इतना ही नहीं, अपने जीवन के साथ साथ हम अपने आस पड़ोस के जीवन को भी बहुत आसान बना देते, लेकिन हम अपने आप मुश्किलें खड़ी करते हैं और आसपास के जीवन को भी मुश्किल में डालते चले जाते हैं, सोचने को मजबूर करते चले जाते हैं। हमारी पीढ़ी का तो निकल गया भैया, कभी सोचना कि माता पिता ने जो दिया था सो आपने उसको तो जिस तरह का था, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा जो कि सामने दिखाई पड़ रही है। आज 12 साल से 20 बरस की एज के लोग, मैं तो कहने वाला था उस दिन कि चलो अच्छा हुआ कि भोपाल में भी युवा है, ये देखने 10 दिन में मिल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया है कि उसका यहाँ मंदिर तक आना। क्यों मुश्किल में हो गया है क्योंकि वो व्यसन में फंस गया, और व्यसन में फंसने वाला व्यक्ति फिर सब चीजों से कतराने लगता है कि क्या करूंगा जाकर, वहां थोड़ी कुछ मिलने वाला है। तब फिर वो व्यसन वाला दृष्टिकोण वाला मंदिर में भी व्यसन ही देखने लगता है, उनका रूप चेंज कर देता, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है लेकिन भीतर से चेतना चेंज नहीं होती। वो बुद्धि लगा लेता है कि बुद्धि के माध्यम से ऐसा ऐसा करूंगा, बस जरा सा नाम भर चेंज करना है, उधर किसी स्टार का नाम था, यहाँ किसी तीर्थंकर का नाम रख, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब ऐसी चीजें घटित होना शुरू होती है। तब आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? अगर आज की ये पीढ़ी इस तरह की चीजें शुरू करेगी, अपने बुद्धि के स्तर पर जिएगी, थोड़ी सी अपनी भावनाओं को ध्यान नहीं देगी, जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, जो हमारी पारमार्थ की भावनाएं हैं, जो एक प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता की भावना है, उस भावना का क्या होगा? किसी फॉरेनर ने लिखा है द न्यू डाइट फॉर अमेरिका, फॉरेनर ने लिखी है कि नई अब जो डाइट होगी अमेरिका की वो क्या होना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं तो उस दिन उस व्यक्ति को पूरा राष्ट्र दे दूंगा जिस दिन वो एक बकेट में एक बेबी रखे और उस बेबी के साथ में एक सेवफल एप्पल और एक ठो खरगोश रखे, और अगर वो बेबी खरगोश खाने लगे और एप्पल से खेलने लगे तो मैं उसे पूरी दुनिया दे दूंगा। ऐसा संभव ही नहीं है, वो खेलेगी तो खरगोश से और खाएगी तो एप्पल खाएगी, खरगोश नहीं खाएगी। आज हम अपने बच्चों को क्या खाना, क्या पहनना, कैसा बात करना, कैसे रहना, अपने जीवन को, इसकी कोई शाम को बैठ करके एक क्लास ले रहे हैं क्या? समय रहते ऐसी एक क्लास हम घर में शुरू कर दीजिए भैया। 10 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठिएगा, बच्चे 60 साल के भी हो जाएं तब भी 80 साल के पिता के लिए तो वे बच्चे ही हैं, आप ऐसा मत मानिएगा कि बहुत बड़े हो गए। सलाह देने के लिए तो आप दे सकते हैं, अपने 20 वर्ष के बेटे को भी प्रेम से सिर पे हाथ रख के और बिठा सकते हैं कि बेटे अगर कोई ऐसी चीज तुम्हारे जीवन में आ गई हो तो उसे छोड़ो, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसकी तासीर कुछ अलग है, वो वीतरागता का धर्म है, बहुत मुश्किल से, बहुत मनुष्य पर्याय में बहुत मुश्किल से वो धर्म की प्राप्ति होती है। कभी उसको अगर आप ऐसे संस्कार डालें, कभी बैठ करके जो है घर में सुबह उठ करके कभी कोई प्रार्थना करें, कभी मेरी भावना की चार लाइनें तो गुनगुनाएं कि हाँ अभी जो है मुझे यहीं पर बता रहे थे कि महाराज जी आप चूंकि मेरी भावना का ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमने भी शुरू कर दी पढ़ना। तो हमारी छोटी सी 3.5 साल की बिटिया जो है पहले तो यहाँ वहाँ के गाने गुनगुनाती थी, अब वो हम लोग पढ़ते हैं तो उन्हीं में से कोई ना कोई गुणी जनों को, अब वो समझती है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे, लेकिन बोलती है। अब 3.5 साल की उम्र क्या होती है, अगर आज वो मेरी भावना की पंक्तियां गुनगुना रही है, आचार्य महाराज तो कहते कि अर्थ भले ही नहीं आवे भैया पर रट लो, ये अच्छी बातें सब सीख लो, हमको जो है शुरू में जैन संस्थान प्रवेश करके 600 प्रश्न उत्तर रटवाए गए थे कि जी रट लो, हम कहते थे समझ में तो आते नहीं, समझ समझ के पढ़ेंगे, कहते समझ बाद में आएगी, अभी तो रट लो। परिभाषा क्यों की जब हम पूछेंगे लक्षण किसे कहते तो तुम बताओ पूरा का पूरा लक्षण, फिर जब समझ में आएगा जब आएगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? बच्चों के भीतर इस तरह के संस्कार भावनात्मक उनको बनाइएगा, उनको बौद्धिक मत बनाइएगा। मैं जानता हूँ कि जमाना पूरा बुद्धि का है, बुद्धि में भी पीछे नहीं पिछड़ना है क्योंकि आज बहुत विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, उसमें भी पीछे नहीं पिछड़ना है, बच्चों को उसमें भी आगे बढ़ाना, पर उसके साथ साथ उनके भीतर आत्मीयत बनी रहे, उनके भीतर भावनाएं बनी रहे, इसका भी ध्यान रखना। यशपाल जी ने अपना एक संस्मरण लिखा है कि जब वो वर्लिन की यात्रा के लिए गए थे, वर्लिन जर्मन में है, तो जर्मन में जब यात्रा के लिए वर्लिन पहुंचे वहां पर तो डिवाइडेशन हो गया था वहां, उस समय वो पहुंचे थे, तो उनको घूमना था जर्मनी पूरा का पूरा, तो पूछा कि अब जर्मनी भाषा तो नहीं आती और दुभाषिया मिलना बहुत मुश्किल है, दुभाषिया खोजा जाए, इससे बेहतर है कि कोई अगर इंडियन वहां पर हो तो उसकी मदद ले ली जाए। तो मालूम पड़ा वहीं पर स्टेशन पर कि हाँ यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है वहाँ दो इंडियन है, एक महाराष्ट्रियन है और एक गुजराती है। इन्होंने कहा बहुत अच्छा, वो दोनों मेरी मदद कर देंगे और मेरी वर्लिन की और जर्मनी की पूरी यात्रा आसान हो जाएगी। वे उनके पास पहुंचे ये सोच करके कि ये भारतीय है मेरी मदद करेंगे, कैसी पवित्र भावना लेकर के गए थे। लेकिन उन दोनों ने उस हॉस्टल में जैसे ही वो पहुंच के उनने कहा कि हम घूमना चाहते हैं 2-3 दिन, तो एक दूसरे की तरफ देखा कि इस बुट्टे के पीछे 3 दिन कौन बर्बाद करे। एक ने कहा थोड़ा पेट में दर्द है, दूसरे ने कहा माथा में बहुत तकलीफ रहती है साहब, और हम इतना समय नहीं दे सकते हैं, आप किसी और की तरफ। दोनों ने इनकार कर दिया। ये वहां भारतीय लोगों का व्यवहार था जिनकी चेतना लगभग मृत प्राय हो जाती है, वे ही एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हैं। यशपाल जी को थोड़ा दुख हुआ, भारी कदमों से वो बाहर निकले और बाहर निकलते ही साथ उन्होंने देखा कि एक जर्मनी युवक बाहर खड़ा हुआ है। शायद वो उनको परेशानी में देखकर उनके निकट आया और उनसे कहा कि आप भारत से आए हैं। उनका क्या, मैं भारत से आया, क्या चाहते? मैं जर्मनी घूमना चाहता हूँ। तो आप कितने दिन में घूम लेंगे? मुझे 3 रोज का समय है, 3 दिन में घूमना चाहता हूँ। तब आपके साथ कोई है? नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। यशपाल जी ने कह दिया कि कोई नहीं है मेरे साथ। तो फिर कैसे घूमे कि अकेले 3 दिन में आप मुख्य जगह ही नहीं घूम पाएंगे? हाँ, ये तो है, पर घूमना तो चाहता हूँ। मैं अपने देश से आया हूँ जर्मनी देखने, क्या आप मेरा साथ पसंद करेंगे? वो जब 3 दिन रह सकता हूँ, आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं आपके साथ 3 दिन रहूं और आपको जो जो स्थान यहाँ देखने लायक है वो दिखा दें? ये तो आपके बक्के खड़े रह गए कि ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ 3 दिन रहना पसंद करेंगे इस जर्मनी में? आप मेरे यहाँ पर मेहमान हैं। और 3 दिन में उस युवक ने, और जब वो पहुंचा बर्लिन की उस बॉर्डर पर, तो युवक फूट फूट के रोने लगा कि आप विदेशी हैं, मैं यहाँ की स्थिति से आपको क्या वाकिफ कराऊं? ये हमारे देश में कभी डिवाइडेशन नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों की वजह से इस तरह की दीवार खड़ी हो गई है। हम लोग बहुत कोशिश में है कि ये दीवार हट जाए। हम सबके हृदय तो एक है, पर ये दीवार बीच में खड़ी हुई है। और उसने सब कुछ दिखाया। सब दिखाने के बाद 3रे दिन जब वो यशपाल को विदा देने लगा, तो उसकी आंख गीली थी। और यशपाल जी ने कहा कि तुम्हारा मैं आभारी हूँ। तो उसने पैर छू लिए कि आभारी तो मैं आपका हूँ कि आपने 3 दिन तक एक विदेशी होकर के भी मेरे साथ आप रहना स्वीकार किया। वो जर्मनी युवक कह रहा है कि आपका आभार मानता हूँ। और हमारे यहाँ अगर हम किसी से पूछें कि मंदिर का रास्ता कौन सा है, तो शायद वो कहेगा सीधे चले जाओ, बाएं मुड़ जाना, वहां सीधे चले जाना, लिखा होगा वहां पर, पहुंच जाना, देख लेना। कोई बाहर से आने वाला अगर पूछे तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं होगा शायद। और यहीं के यहीं, और वो तो विदेश की स्थिति है। ये हम क्या सिखा रहे हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को? वहां कम से कम व्यक्ति ये तो कह देता है, 12 बजे रात को भी कोई पहुंचे तो ये तो कह देता कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, बताइएगा। और वो पूछे कि फलानी जगह जाना है, तो वो सिर्फ ये कहता कि जस्ट वेट, केम विद मी, ठहरिएगा, और गाउन चेंज करके ड्रेस पहन के कहता आइए मेरे साथ। आज जहाँ धर्म नाम की चीज नहीं है, सिर्फ कर्म है, वहां पर भी भावनाएं नहीं मरी हैं। और हमारे यहाँ तो धर्म 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 के अलावा कोई चर्चा नहीं है। इसके बाद भी हमारी भावनाओं को क्या हो गया है, कहाँ से वो कहाँ पहुंच गई हैं? हम इतना बुद्धि को अपने ऊपर लादते चले जा रहे हैं, इससे क्या होगा आगे आने वाली पीढ़ी को? और स्वयं अपने जीवन को थोड़ा सा भावनात्मक बनाइएगा, दूसरे की भावनाओं की भी कद्र करिएगा। और मैं आपकी भावनाओं की कद्र कर रहा हूँ, ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि सब लोग जा रहे हैं कि मैं सबके यहाँ जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि हम सब लोग जगह जगह जा सके। आपको थोड़ा सा लगेगा तो मंगलवार पास में था, बहुत लगे थे लोग, बड़ी भावना थी, और मैं जान रहा हूँ भावना की कद्र कर रहा हूँ, उनके भावना का सम्मान कर रहा हूँ, पर नहीं पहुँच पाता हूँ। आज भी मेरे लिए आया है कि आप पहुँचिएगा। मैं क्षमा करें, कहीं भी नहीं जाने के मूड में हूँ। मैं 4 महीने एक ही स्थान पर शांतिपूर्वक, हाँ कभी कोई विशेष परिस्थिति में तो फिर पहुँच जाऊँगा। आप उसको बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा। भावना है सबकी, फिजिकली तो हर जगह नहीं जा सकते हैं, मेंटली जहाँ जहाँ अच्छा कुछ हो रहा है वहाँ मानिएगा कि मैं हूँ, सब वहाँ पर हैं। ऐसा मान करके अपने जो भी आयोजन होते हैं उनमें खूब धर्म ध्यान करिएगा, खूब मन से उन सबका उत्साह के साथ और वीतरागता का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारा धर्म वीतरागी है। मैं घंटे भर धर्म ध्यान करने गया हूँ तो मेरे जीवन में कितनी वीतरागता आई है, मेरे आस पड़ोस में वो वीतरागता कितनी प्रकट हुई है। बस इतना ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों से संदेश लेगी और हमारे इस धर्म की प्रभावना दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। प्रभावना तो ज्ञान और आचरण और श्रद्धा इन सबसे होती है। हमारे जीवन में सच्ची श्रद्धा हैं क्योंकि सब तरफ से लोग आ रहे हैं, सब कॉलोनी वाले 24 मंदिर हैं। मैं अगर एक एक दिन भी सबके यहाँ फंक्शन अटेंड करूँ तो दीपावली शाम में आ जाएगी, 24 दिन तो लग ही जाएंगे कम से कम। फिर उसके बाद अगर आपके बीच ज्यादा समय रुकना हुआ तो कोशिश करूंगा कि सब तक पहुँचूँ। जब आप दौड़े दौड़े मेरे पास तक चले आते हैं तो मैं जानता हूँ मेरा भी फर्ज है कि मैं आपके पास तक आपके आमंत्रण पर पहुँचूँ, पर मेरी अपनी परिस्थितियाँ हैं जिस वजह से जो है आप अन्यथा बिल्कुल नहीं सोचे कि क्यों हमारे महाराज जी नहीं आते हैं, क्यों नहीं जाते हैं। नहीं भैया, हम इंदौर में भी पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, वहाँ तो 65 मंदिर थे कि भैया एक ही जगह पूरा चतुर्मास करेंगे, जगह जगह जा नहीं पाएंगे। नहीं तो जो स्वाध्याय इत्यादि के लिए किताबें विताबें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर बार बार थोड़ी नए नए थोड़ी फिर सकते हैं, सब इकट्ठी है उनका स्वाध्याय घंटे दो घंटे, नहीं तो घूमने घूमने में ही पूरा समय निकल जाए। इस वजह से आप उसको मान करके और शांति पूर्वक अपने उत्साह पूर्वक और वीत रास्ता का ध्यान रख करके सारे आयोजनों को करें और खूब उत्साह से धर्म की भावना करें। भावनाएं अगर है तो प्रभावना है, और अगर भावना पवित्र नहीं है तो चाहे जो करो तो भावना नहीं होती। अपनी भावना को जरूर पवित्र बनाना, आगे आने वाली पीढ़ी को भी भावनात्मक बनाना, मैं इसकी कामना करता हूँ। और अपन आज इसी भावना से नमोकार मंत्र करते हैं कि हम सबके जीवन में बुद्धि के साथ साथ पवित्र भावनाएं भी आए और हम अपने जीवन को खूब अच्छे से आसानी से बिताएं। ऐसी भावना के साथ मेरे साथ आपकी नमोकार।
Namo तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कालुष मिट जाए, ऐसी गुरु वाणी जैसे समुद्रण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीढ़ी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी श्री अजित वीर श्री दिगंबर जैन पंच बाल गति मंदिर विद्यासागर नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एडी रोड इंदौर 10 दूरभाष कोड 0731 दूरभाष संख्या 2571851।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तम घना अज्ञानता का छारना है गर, आज क्षमा सागर जैसा संत चाहिए।